प्यारे विद्यार्थियों, श्री बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में इकाई एक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इकाई एक का नाम था भारत का संविधान, जिसमें 3 अध्याय थे, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम इकाई 2 भारत में शासन, जिसमें पहला अध्याय है संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद क्या है, संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के अंग कौन कौन से हैं, संसद को क्या कहा जाता है, संसद का गठन किस प्रकार होता है, संसद सदस्य होने की कौन कौन सी योग्यताएं हैं, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, संसद के अधिवेशन कितने होते हैं, गणपूर्ति या कोरम क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। कोई भी लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक शासन है, वहाँ पर शासन सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कि प्रत्येक देश में अलग अलग नाम होते हैं, प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका के नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम है पार्लियामेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम है कांग्रेस, जापान की व्यवस्थापिका का नाम है डाइट, जर्मनी की व्यवस्थापिका का नाम है बुंडेस्टांग, अफगानिस्तान की व्यवस्थापिका का नाम है शूरा, और इराक की व्यवस्थापिका का नाम है मजलिस। इसी प्रकार भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संसद का गठन किस प्रकार हुआ है? ऋग्वेद में सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में भी ऋग्वेद में सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, वही से आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जा सकती है। ऋग्वेद से ही आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जा सकती है। उस समय भी ऋग्वेद था, ऋग्वेद में 2 संस्थाएँ थी, सभा और समिति। इसी प्रकार वर्तमान में संसदें, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब भारतीय संविधान में संसद का गठन अनुच्छेद 79 में किया गया है। जिसमें कहा गया है भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस प्रकार भारतीय संसद के सदन दो हुए, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के अंग पूछ लिए जाए, संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के अंग में तीनों को शामिल किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के सदन पूछें तो सदन दो ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए संसद में किन किन को शामिल किया जाता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को शामिल किया जाता है। संसद सदस्य होने के लिए योग्यताएं, संसद सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। संसद सदस्य बनने के लिए पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद सदस्य बनने के लिए पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें भी ये बात कही गई है, लंबे समय से देश में ये मांग की जाती रही है कि देश के सर्वोच्च पदों पर जन्मजात भारतीय ही आसीन होने चाहिए। लंबे समय से यही मांग की जाती रही थी कि देश के सर्वोच्च पदों पर जन्मजात भारतीय ही आसीन होना चाहिए। कई देशों में ऐसा प्रावधान भी है, यद्यपि भारतीय संविधान में ऐसा उल्लेख अभी तक नहीं है। भारतीय संविधान में जन्मजात भारतीय होना चाहिए ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, तो भी योग्यताएं ये हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद सदस्य बनने के लिए दूसरी योग्यता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष व लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद की तीसरी योग्यता है संसद सदस्य बनने की, अन्य ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करें। उस व्यक्ति में वह सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त और भी संसद सदस्य बनने की योग्यताएं, निर्योग्यताएं, तो योग्यताएं तीन हो गई मुख्य, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है संसद जो योग्यताएं निर्धारित करें वह सभी योग्यताएं उस व्यक्ति में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति विकृत चित्त वाला नहीं होना चाहिए। विकृत चित्त अथवा पागल व दिवालिया व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। ये निर्योग्यता है, यानी विकृत चित्त वाला या पागल व दिवालिया व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अधिकतम दो स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। यदि वह दोनों स्थानों से निर्वाचित हो जाता है, विजय हो जाता है, जीत जाता है, तब एक माह के भीतर उसे एक स्थान रिक्त करना होता है। तब एक माह के भीतर उसे एक स्थान खाली करना होता है, रिक्त करना होता है। इस प्रकार संसद सदस्य बनने के लिए तीन योग्यताएं और उसमें निर्योग्यताएं भी अपने पढ़ ली हैं। अब आगे दूसरा पॉइंट है शपथ। संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? संसद सदस्यों को बोलचाल में क्या कहते हैं। संसद के सभी सदस्यों को जिन्हें हम बोलचाल में सांसद अथवा एमपी कहकर संबोधित करते हैं, संसद के सभी सदस्यों को हम बोलचाल में सांसद या एमपी कहते हैं। एमपी, एमपी का पूरा नाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी व्यवस्थापिका का सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के सभी सदस्यों को बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, सांसद अथवा एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति से शपथ लेता है। तो संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी इस कार्य के लिए किसी को नियुक्त कर दें, किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो उस नियुक्त व्यक्ति के सामने भी इन संसद सदस्यों को शपथ लेनी पड़ती है और उस पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। तो संसद सदस्यों को उसको पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा किया गया नियुक्त व्यक्ति। तो संसद का गठन कौन से अनुच्छेद में, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं और निर्योग्यताएं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है संसद सदस्यों को शब्द कौन दिलाता है, संसद सदस्यों को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, और इसमें अब चौथा पॉइंट है संसद की सत्र, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करेगा। संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन के लिए अधिवेशन बुलाएगा, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। वास्तव में भारतीय संसद के प्रतिवर्ष 3 सत्र अथवा अधिवेशन होते हैं। वास्तव में सही रूप में संसद के प्रतिवर्ष 3 सत्र अथवा अधिवेशन होते हैं। तो संसद के प्रतिवर्ष कितने अधिवेशन या सत्र होते हैं, 3 अधिवेशन या सत्र होते हैं। संसद के अधिवेशन बुलाने या आहूत करना, सत्रावसान करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन से अनुच्छेद में बुलाता है, अनुच्छेद 85 में बुलाता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा, आहूत करेगा, और प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। पहला अधिवेशन, पहला सत्र होता है जिसका नाम है बजट सत्र। पहले अधिवेशन या सत्र का नाम है बजट सत्र। बजट सत्र जो फरवरी और मई में होता है, बजट सत्र जो फरवरी और मई के मध्य होता है। बजट सत्र हिंदी के किन महीनों के मध्य होता है, फरवरी और मई के मध्य। दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र। संसद का दूसरा सत्र या अधिवेशन है मानसून सत्र, जो जुलाई और सितंबर के मध्य होता है, जो जुलाई और सितंबर के मध्य होता है। तीसरा सत्र या अधिवेशन सत्र अथवा अधिवेशन है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो नवंबर और दिसंबर के मध्य होता है, शीतकालीन सत्र जो नवंबर और दिसंबर के मध्य होता है। इस प्रकार संसद के सत्र सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद के सत्र या अधिवेशन एक वर्ष में तीन बार होते हैं, तीन सत्र होते हैं। पहला होता बजट सत्र जो फरवरी मई में, दूसरा होता मानसून सत्र जो जुलाई सितंबर के मध्य, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर और दिसंबर के मध्य होता है। और सत्रावसान करने का अधिकार, अधिवेशन बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को दिया गया है। संसद की कार्रवाई के दौरान सदनों को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। संसद की कार्रवाई के दौरान सदनों को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है, यानी बुलाने का अधिकार, सत्रावसान करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी का होता है। पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है, और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति पीठासीन अधिकारी होता है। तो सदन में अधिवेशन बुलाने का अधिकार तो होता है राष्ट्रपति को, अधिवेशन आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और सदनों को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। तो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो लोकसभा में होता है लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में होता है राज्यसभा का सभापति। लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। सत्रावसान करने का अधिकार, बुलाने का अधिकार, आहूत करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को दिया गया है, और स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी का होता है, जो पीठासीन अधिकारी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होता है। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति जिसको कोरम भी कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम क्या है? गणपूर्ति अथवा कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है। गणपूर्ति अथवा कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदनों की कार्रवाई को वैधानिकता प्राप्त होती है। जिनकी उपस्थिति से सदनों की कार्रवाई को वैधानिकता प्राप्त होती है, यानी गणपूर्ति या कोरम क्या है? गणपूर्ति या कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है, यानी संसद में लोकसभा और राज्यसभा के इतने सदस्य उपस्थित होंगे तभी है सदन की कार्रवाई संचालित की जा सकती है। तो कोरम या गणपूर्ति ये हुई कि न्यूनतम सदस्य संख्या, संसद ने न्यूनतम सदस्य संख्या क्या तय की गई है, वह न्यूनतम सदस्य हैं सदन की कार्रवाई में उपस्थित होने जरूरी है, बाकी अनुपस्थित रहें तो भी कोई बात नहीं। तो प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग होता है। कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग निर्धारित किया गया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम 54 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करने के लिए सदन में कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए। 55 सदस्य कैसे? क्योंकि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 545। तो 545 का 10% कितना होता है? 54.5, 54.5। यानी 545 का 10वां भाग 54.5 होता है, तो कम से कम 54.5 यानी 55। तो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करने के लिए सदस्य संख्या कम से कम सदस्य कितने उपस्थित होनी चाहिए? 55 सदस्य होने चाहिए। और राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। 25 कैसे? राज्यसभा की सदस्य संख्या, राज्यसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में भारत में कितनी है? 245। 245 का 10% कितना हुआ? 24.5। 245 का 10% हुआ 24.5 यानी 25, यानी कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 का 10वां भाग और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 का 10वां भाग। संसद की कार्रवाई यानी लोक संसद की कार्रवाई का संचालन करने हेतु इतने सदस्य अवश्य होने चाहिए। यह संसद द्वारा कोरम या गणपूर्ति निर्धारित की गई है, जिससे संसद की कार्रवाई ठप न रह सके, संसद की कार्रवाई रुक न सके। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे संसद में भाषा। संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा, संविधान ने संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी व अंग्रेजी निर्धारित की है। संविधान ने संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी या हिंदी एवं अंग्रेजी निर्धारित की है। कार्य संचालन के हिंदी और अंग्रेजी को मान्यता दी है, किंतु पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकता हो, किंतु पीठासीन अधिकारी है किसी ऐसे सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकता हो, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुज्ञा दे सकते हैं। अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुज्ञा दे सकता है, मना कर सकता है। इसलिए संविधान में कार्य संचालन के लिए संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी है। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रियों एवं महान्यायवादी के संसद में अधिकार। मंत्रियों एवं महान्यायवादी के संसद में क्या अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेखित है, संविधान का अनुच्छेद 88 में उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने एवं कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी होगा। संविधान का अनुच्छेद 88 अनुच्छेद 88 यह कहता है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने एवं कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी होगा। महान्यायवादी को संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। महान्यायवादी को संसद में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी तो होगा, लेकिन अनुच्छेद 88 में कहा गया है महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार नहीं होगा। महान्यायवादी संसद में मतदान करने का अधिकारी नहीं होगा, तथा मंत्री मतदान केवल उसी सदन में कर सकेगा। मंत्री मतदान केवल उसी सदन में कर सकेगा जिस सदन का वह सदस्य है। और यह भी तय किया गया है, उल्लेख किया गया कि मंत्री मतदान केवल उसी सदन में कर सकेगा जिस सदन का वह सदस्य है। इस प्रकार आज हमने संसद के बारे में चर्चा की है। भारत की व्यवस्थापिका का नाम संसदें, संसद का गठन कौन से अनुच्छेद में है, संसद सदस्य बनने के लिए योग्यताएं, निर्योग्यताएं, संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, संसद के कितने सत्र अधिवेशन होते हैं एक वर्ष में और कब कब होते हैं, कार्यवाही में भाग लेने के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए, और संसद में भाषा किन भाषाओं को मान्यता है, और नेक्स्ट पॉइंट मंत्रियों एवं महान्यायवादी के संसद में क्या अधिकार हैं, इसके बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा की है। कल हम आगे अगली क्लास में हम राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा करते हैं, राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। आज अपनी हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।